ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने कहा, तुम बच्चे हो धरती के सितारे, और वह है आसमान के सितारे, जल सितारे। जब सितारों की बात आती है तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चे हो धरती के सितारे, और वह है जड़ आसमान के सितारे। तो जब सितारों की बात आती है तो मनुष्यों की बुद्धि कहाँ जाती है? ऊपर की ओर जाती है। और जब आपके सितारों की बात आती है तो आपकी बुद्धि कहाँ जाती है? आपकी बुद्धि स्वयं के ऊपर जाती है कि हम सितारों के अंदर कितनी चमक है, हम सितारे कितने लक्की सितारे हैं। तो आपकी बुद्धि स्वयं के ऊपर जाती है और मनुष्यों की बुद्धि जाती है आसमान की ओर। दूसरी बात बाबा ने कही कि बाप आकर के गॉडरेज का ताला खोलते हैं, लेकिन गॉडरेज का ताला खोलने की चाबी कौन सी है? वो बाबा ने कहा कि गॉडरेज का ताला खोलने की चाबी है ड्रामा की पॉइंट। ड्रामा के अंदर हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, और कलप पहले मिसल हर आत्मा पार्ट बजा रही है। आत्मा के अंदर आदि अनादि पार्ट भरा हुआ है जो चेंज नहीं हो सकता है। फिर बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, क्योंकि वो ब्राह्मण क्या करते हैं, ऊपर नीचे इधर उधर होते रहते हैं, और ये माला बनेगी अंत में। बाबा ने कहा कि देखो कि जो मुर्बी बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी। मुर्बी बच्चों की निशानी ये होगी, वो बाप को भी याद करेंगे, बाप को भी प्यार करेंगे, और साथ साथ अपने घर को भी लव करेंगे, क्योंकि उनको रहता है अभी हम घर जाएंगे, घर से वापस आएंगे, नई दुनिया में आएंगे, तो वो भी घर को भी प्यार करते हैं और बाप को भी प्यार करते हैं। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 6 दिसंबर 2024। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, तुम्हें यहाँ रहते नई दुनिया को याद करना है और आत्मा को पावन बनाना है। मीठे बच्चे तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, तुम्हें यहाँ रहते हुए नई दुनिया को याद करना है और आत्मा को पावन बनाना है। आज का प्रश्न है, बाप ने तुम्हें ऐसी कौन सी समझ दी है जिससे बुद्धि का ताला खुल गया है? बाप ने तुम्हें कौन सी ऐसी समझ दी है जिससे बुद्धि का ताला खुल गया है? इसका उत्तर है, बाप ने इस बेहद अनादि ड्रामा की ऐसी समझ दी है जिससे बुद्धि पर जो गॉडरेज का ताला लगा हुआ था, पहले क्या था, बुद्धि डल थी, कुछ नहीं समझते थे। बाप ने इस बेहद अनादि ड्रामा की ऐसी समझ दी है जिससे बुद्धि पर जो गॉडरेज का ताला लगा हुआ था वह खुल गया है। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन गए हो। बाप ने समझ दी है कि इस ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना अनादि पार्ट है। जिसने कलप पहले जितना पढ़ा है वे अभी भी पढ़ेंगे, पुरुषार्थ कर अपना वर्षा पाएंगे। अब किसको कह रहे, बहुत पुरुषार्थ करो, बहुत करो, अब जितना पढ़े वो पढ़ेगा। और कई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ सिखलाते हैं। जब से बाप बना है तब से टीचर भी है और तब से फिर सतगुरु भी है। बाबा हमारा बाप भी है, बाप मिला फिर टीचर मिला, साथ साथ सतगुरु भी है। जब से बाप बना है तब से हमारा टीचर भी है, तब से फिर सतगुरु के रूप में शिक्षा भी दे रहे हैं। ये तो बच्चे समझते हैं, जबकि वे बाप टीचर गुरु हैं तो छोटा बच्चा तो नहीं है ना। बाबा हमारा कोई छोटा बच्चा थोड़ी है, वो हमारा बाप है, टीचर है, गुरु है, तो इतनी शिक्षा देते हैं। ऊंचते ऊंच बड़े ते बड़ा है, बाबा कौन है, ऊंच जे ऊंच बड़े ते बड़ा है। बाप जानते हैं ये सब मेरे बच्चे हैं और ड्रामा प्लान अनुसार पुकारा भी है कि आकर हमको पावन दुनिया में ले चलो, परंतु समझते कुछ नहीं है। अभी भी भक्ति मारे में गाते रहते, हे भगवान आओ हमको ले चलो, दुखों से छुड़ाओ, कितना गाते रहते, उनको बताओ ना कि भगवान आया, वो बिल्कुल नहीं समझेंगे। परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अभी तुम समझते हो पावन दुनिया सतयुग को और पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। कहते भी हैं कि आकर के हमको रावण की जेल से लिबरेट कर दुखों से छुड़ाकर शांति धाम सुख धाम में ले चलो। नाम दोनों अच्छे हैं, कौन से, शांति धाम और सुख धाम, मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम। बाबा कहते दोनों नाम बहुत अच्छे हैं, नाम दोनों अच्छे हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति व शांति धाम सुख धाम। सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में है ही नहीं कि शांति धाम कहाँ है और सुख धाम कहाँ होता है, बिल्कुल ही बेसमझ है। कहेंगे शांति चाहिए, पुकारते रहते, लेकिन शांति कहाँ मिलेगी वो नहीं जानते ना, तो बाबा को कहना पड़ता है बिल्कुल बेसमझ है। तुम्हारी एम एंड ऑब्जेक्ट ही समझदार बनने की, आज कौन सी एम एंड ऑब्जेक्ट है, समझदार बनने की। बेसमझों के लिए ही तो एम एंड ऑब्जेक्ट होती है। अब स्कूल में जाता है पढ़ेगा और कोई हाई क्वालिफिकेशन लेनी है तो उसको अब इतने नॉलेज नहीं, पढ़ेगा तब तो जाकर के वो एम एंड ऑब्जेक्ट को प्राप्त करेगा ना। तो बाबा कहते हैं बेसमझों के लिए एम ऑब्जेक्ट होती है कि ऐसा समझदार बनना है, सभी को सिखाना है कि ये है एम एंड ऑब्जेक्ट। एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है, मनुष्य से देवता बनना, मनुष्य से देवता बनना, ये है ही मनुष्य की सृष्टि और वह है देवताओं की सृष्टि। सतयुग में है देवताओं की सृष्टि, तो जरूर मनुष्यों की सृष्टि कलयुग में होगी। अब मनुष्य से देवता बनना है तो जरूर पुरुषोत्तम संगम युग भी होगा। वह है देवताएं और ये है मनुष्य। देवताएं हैं समझदार, बाप ने ऐसा समझदार बनाया। देवताएं बहुत समझदार हैं, उनको किसने बनाया है, बाप ने ऐसा समझदार बनाया है। बाप जो विश्व का मालिक है, भल खुद मालिक नहीं बनता है। बाबा बार बार बताते, देखो मैं बच्चों को मालिक बना देता हूँ, खुद नहीं बनता हूँ। बाप जो विश्व का मालिक है, भल मालिक नहीं बनता है, परंतु गाया तो जाता है ना, गायन करते, विश्व का मालिक है, परमात्मा के लिए गायन करेंगे, बाबा के लिए करेंगे, लेकिन वो बनाता है, खुद नहीं बनता है, परंतु गाया तो जाता है ना। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, बेहद का सुख होता ही है नई दुनिया में और बेहद का दुख होता है पुरानी दुनिया में। देवताओं के चित्र भी तुम्हारे सामने हैं, उनका गायन भी है कि देवताएं कितने संपूर्ण थे, तो गायन भी करते हैं, चित्र भी हैं, उनका गायन भी है। आजकल तो पांच भूतों को भी पूजते रहते हैं। अभी बात तुमको समझाते हैं, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, तुम्हारे में भी नंबर वन पुरुषार्थ अनुसार जानते, कितना बड़ा कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। हम बैठे हैं, बाबा हमको क्या क्या दे रहे हैं, ये बातें भी कभी कभी बुद्धि से निकल जाती हैं, तो इसलिए बाबा को कहना पड़ता है कि तुम्हारे में भी नंबर वन पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। फिर बाबा ने कहा हमारी एक टांग है स्वर्ग में और एक टांग है नरक में। नरक में भी है रहे पड़े, लेकिन स्वर्ग में जाना है, नरक में रहते हुए भी संगम युग पर है। हमारी एक टांग स्वर्ग में, एक टांग नरक में है। रहते तो यहाँ हो ना, परंतु बुद्धि नई दुनिया में है, और जो नई दुनिया में ले जाने वाला है उनको याद करना है। बाप की याद से ही तुम पवित्र बनते हो, ये शिव बाबा बैठ समझाते। ये सारी बातें जो है कौन समझाता है, शिव बाबा ही समझाते हैं। ये शिव बाबा बैठ समझाते हैं। शिव जयंती मनाते तो जरूर हैं, परंतु शिव बाबा कब आया और कब आया और क्या आकर किया कुछ भी पता नहीं है। शिव रात्रि मनाते हैं और श्री कृष्ण की जयंती मनाते हैं, वही अक्षर जो श्री कृष्ण के लिए कहते वह शिव बाबा के लिए नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण के लिए तो क्या कहेंगे, रात्रि में जन्म लिया, 12 बजे जन्म लिया, लेकिन शिवरात्रि के लिए तो शिव बाबा के लिए तो नहीं कहेंगे ना, इसलिए उनकी फिर शिवरात्रि कहते हैं। अर्थ कुछ भी समझते नहीं है। तुम बच्चों को तो अभी अर्थ समझाया जाता है, शिव जयंती क्यों मनाते हैं, श्री कृष्ण जयंती का रहस्य क्या है, बाबा की तो सारा अर्थ जो है बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं। अथा दुख है कलयुग के अंत में, फिर अथा सुख होते हैं सतयुग में। ये तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। जिन्होंने कलप पहले पढ़ा है वही अभी पढ़ेंगे। अब कितना भी कहो इतने लोग आए क्यों नहीं आते, क्यों नहीं समझते, उनका ड्रामा में पार्ट ही नहीं, उनको जाना ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे। तो बाबा पक्का करा रहे हैं कि जिन्होंने कलप पहले पढ़ा है वही अभी पढ़ेंगे। जिसने जो पुरुषार्थ किया होगा वही करने लग पड़ेंगे। सब ऐसे ऐसे बैठे ना, कलप पहले वाले बाबा के पास आए, फटाफट बाबा के बन गए और पुरुषार्थ करने लग गए। जिसने जो पुरुषार्थ किया होगा वही करने लगेंगे और ऐसा ही पद भी पाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में पूरा चक्र है, तुम ही ऊंच से ऊंच पद पाते हो, फिर उतरते भी ऐसे हो। ऊंच पद भी पाते हैं और धीरे धीरे उतरते भी हैं। बाप ने समझाया है ये जो मनुष्यों की आत्माएं हैं, माना है ना, सब नंबर वार आती है, द्वापर से लेकर के सब धर्मों की सब आत्माएं आती रहती हैं, नंबर वार आती रहती हैं। बाप ने समझाया है कि ये जो मनुष्य की आत्माएं हैं, माना है ना, सब नंबर वार आती हैं। हर एक एक्टर को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, किस समय किसको क्या पार्ट बजाना है। हर आत्मा का अपना पार्ट है, कितना भी कहो ये पहले क्यों नहीं आया, बाबा हम आपसे पहले क्यों नहीं मिले थे। कई बच्चे कंप्लेन करते हैं, बाबा हम देरी से क्यों आए, हम पहले आपको क्यों नहीं मिले। बाबा कहते तुम्हारा पार्ट ही ऐसा था। बिल्कुल, बाबा कहते अगर शुरू में आते तो माया भी जल्दी खींच लेती, तो इसलिए जो पार्ट जिस समय का है उसी पार्ट अनुसार ही आना होता है। किस समय किसको क्या पार्ट बजाना है ये अनादि बना बनाया हुआ ड्रामा है जो बाप बैठ समझाते हैं। अब जो तुमको बाप समझाते हैं वह अपने भाइयों को समझाना है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष के बाद बाप आकर हमको समझाते हैं, तो हम फिर भाइयों को समझाते हैं। बाबा ने हमको समझाया और बच्चों ने क्या किया, भाइयों को जाके समझाया। बाबा थोड़ी जाएंगे एक एक के पास। बाबा तो हमेशा कहते मैं अपने बच्चों से बात करता हूँ, मैं बाहर वाले किसी से बात ही नहीं करता। तो बाबा हमको समझाते हैं, हम जाकर के आत्माओं को भाइयों को समझाते हैं, हम फिर भाइयों को समझाते हैं। भाई भाई आत्मा के संबंध में है। बाप कहती है इस समय तुम अपनी को अशरीरी आत्मा समझो। आत्मा को ही अपने बाप को याद करना है पावन बनने के लिए। बाबा कहती मैं थोड़ी कहता हूँ याद करो, लेकिन आपको पावन बनना है तो इसलिए बाबा को याद करना पड़ेगा। आत्मा को अपने बाप को याद करना है पावन बनने के लिए। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा अपवित्र तो जेवर भी अपवित्र। नंबर वार तो होते है ना, फीचर्स एक्चुअली एक ना मिले दूसरे से। कितना भी करो, कितना भी एक्टिविटी एक जैसी हो, लेकिन उसमें कुछ न कुछ अंतर जरूर होता है। तो बाबा कहते हैं ड्रामा ऐसा बना हुआ है, फीचर्स और एक्टिविटी एक ना मिले दूसरे से। नंबर वन सब अपना अपना पार्ट बजाते हैं, फर्क पड़ नहीं सकता। कितना भी कहो कि हमारा ऐसा होना चाहिए, हमारा पार्ट ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, बाबा कहते हो ही नहीं सकता है। जो बना बनाया है वही चलेगा, फर्क पड़ नहीं सकता। नाटक में वही सीन देखेंगे जो कल देखी होगी। ड्रामा देखते हैं, फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं, जो सीन देखा था वही का वही आएगा, उसमें थोड़ी कि सीन कट जाएगा। नाटक में जो वही सीन देखेंगे जो कल देखी होगी वही रिपीट होगी ना। ये फिर बेहद का और कल का ड्रामा है। अब बाबा बता रहे ड्रामा कैसा है, एक तो बेहद का है और कल का है। कल तुमको समझाया था, तुमने राजाई ली, फिर राजाई गवाई, आज फिर समझ रहे हो राजाई पाने के लिए। आज भारत पुराना नरक है, कल नया स्वर्ग होगा। ये खेल कौन सा है, आज और कल। कल ऐसा था, आज ऐसा है और कल फिर वैसा होगा। तुम्हारी बुद्धि में है कि अभी हम नई दुनिया में जा रहे हैं, श्रीमत पर श्रेष्ठ बन रहे हैं। श्रेष्ठ जरूर सृष्टि, श्रेष्ठ जरूर श्रेष्ठ सृष्टि पर राज करेंगे। अभी तुम समझते हो इस बेहद के ड्रामा को, जब कोई अच्छी रीति समझे तब बुद्धि में बैठे। ये ड्रामा इतना अच्छा है, वंडरफुल है, बहुत प्यारा है। बाबा कहते जब इस ड्रामा को समझेंगे तब उनकी बुद्धि भी बैठेगा और तब उसका अनुभव भी कर सकेंगे। इस बेहद के ड्रामा को जब कोई अच्छी रीति समझे तब बुद्धि में बैठे। शिवरात्रि भी मनाते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं है। तो अब तुम बच्चों को रिफ्रेश करना होता है, फिर तुम औरों को भी रिफ्रेश करते हो। बाबा के पास आते थे और बाबा कहते थे देखो बच्चे आए हैं। बाबा बच्चों को बहुत रिफ्रेश करते थे। फिर बाबा कहते थे बच्चे जाओ। कई कई बच्चे ऐसे होते थे बाबा नहीं हमको तो यही रहना है, हमको तो यही बैठना है। बाबा कहते तुम जो रिफ्रेश हो जाकर के अपने भाइयों को रिफ्रेश करो। तो यहाँ आते हैं बाबा के पास भरपूर होने के लिए, बादल भरने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए। फिर बाबा तो यहाँ ठहरने ही नहीं देते थे। बाबा कहते आज आयो कल जाओ, जल्दी जल्दी जाओ, जाकर के रिफ्रेश करके फिर वापस आना। तो बाबा क्या कहते हैं, तो अब तुम बच्चों को रिफ्रेश करना होता है, तुम फिर औरों को भी रिफ्रेश करते हो। अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है, फिर सदगति को पा लेंगे। बाप कहती हैं, मैं स्वर्ग में नहीं आता हूँ, मेरा पार्ट ही ऐसा है। बाबा ने उस दिन भी कहा ना कि देखो, मेरे भाग्य में, मेरी तकदीर में नहीं है कि मैं स्वर्ग में आऊं। फिर बाबा कहते, मैं क्या करूं, मेरा पार्ट ही ऐसा है। बाबा कहती हैं, मैं स्वर्ग में नहीं आता हूं, मेरा पार्ट ही है पति दुनिया को बदल, पावन दुनिया बनाना। वहां तो तुम्हारे पास क्या होगा, कारून का खजाना। इतना खजाना, इतना सुख होता है, बाबा को भी भूल जाते हो, याद ही नहीं करते हैं। तो बाबा कहते, वहां तो तुम्हारे पास कारून का खजाना होता है, यहाँ तो कंगाल है। इसलिए बाप को बुलाते हैं कि आकर के बेहद का वर्षा दो। दुखी हुए, कंगाल हुए तो बाबा को पुकारना शुरू कर दिया। तो बाबा कहते, वहां तो तुम्हारे पास कारून का खजाना होता है, यहाँ तो कंगाल है। इसलिए बाप को बुलाती हूँ कि आकर के बेहद का वर्षा दो। कलप कलप बेहद का वर्षा मिलता है, फिर कंगाल भी हो जाते हो। वर्षा भी पाते, फिर कंगाल होते, फिर बाबा को पुकारते। चित्रों पर समझाओ तब समझ सके। पहले नंबर में है लक्ष्मी नारायण, फिर 84 जन्म लेते वह मनुष्य बन गए हैं। ये ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिला है। तुम जानते हो कि आज से 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसको वैकुंठ, पैराडाइज और डिटिज्म वर्ल्ड कहते हैं। अभी तो नहीं कहेंगे ना। 5000 वर्ष पहले क्या था, आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसको क्या कहते, वैकुंठ, पैराडाइज, डीटी वर्ल्ड कहते हैं। परंतु अभी तो नहीं कहेंगे ना, अभी तो डेविल वर्ल्ड है। डेविल वर्ल्ड की एंड और डीटी वर्ल्ड का शुरुआत का है अभी संगम। डेविल वर्ल्ड की एंड, डीटी वर्ल्ड की आदि का अब है संगम। ये बातें अभी तुम समझते हो और कोई के मुख से सुन भी ना सको। ऐसी ऐसी बातें दुनिया में कोई नहीं बता सकता है। भल दुनिया वाले कहते विनाश है, ये होगा, हालात खराब हो, लेकिन ये तो नहीं बताते ना कि अभी डीटी वर्ल्ड आना है, उसका संगम है, कैसे वहाँ वर्ल्ड में जाएंगे, वो तो नहीं जानते ना। अभी तुम समझते हो और कोई मुख से सुन ना सके। बाप ही आकर के मुख लेते हैं। मुख किसका लेंगे वो भी नहीं समझते, किसका आधार लेंगे वो भी नहीं समझते हैं, समझते ही नहीं है। बाप की सवारी किस पर होगी, जैसे तुम्हारी आत्मा की इस शरीर पर सवारी है ना। शिव बाबा को तो अपनी सवारी है ही नहीं। अब बाबा कहते, मेरा तो शरीर है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा ना, सवारी लूंगा। और बाबा ने सवारी भी कौन सी ली, ब्रह्मा का तन लिया। तो ब्रह्मा बाबा को भी कितना नशा होता था कि शिव बाबा ने मेरा शरीर लोन पर लिया। अरे मैंने अपना शरीर बाबा को दिया है, तो बाबा उसका शरीर का लोन लेते हैं, तो उसका रिटर्न भी कितना देते हैं। शिव बाबा की अपनी सवारी तो है नहीं, तो उनको मुख तो जरूर चाहिए ना, नहीं तो राजयोग कैसे सिखलावे, प्रेरणा से तो नहीं सीखेंगे ना। अब बाबा कहते, चलो प्रेरणा दे भी दूं, हर एक की बुद्धि अपनी अपनी, किसकी सतो प्रधान तो है नहीं, किसकी थोड़ी सी अच्छी है, किसकी बिल्कुल डल है, बिल्कुल ही खत्म है। तो बाबा कहते, वो कैसे समझेंगे, तो मुख का आधार तो लेना पड़ता है ना, प्रेरणा से तो नहीं सीखेंगे। ये सब बातें दिल में नोट करनी, कहाँ नोट करनी है, डायरी में भी नोट करो और बुद्धि रूपी, दिल रूपी डायरी में भी नोट करना अथवा मनन करते रहना है। ये सब बातें दिल में नोट करनी है, परमात्मा की भी बुद्धि में सारी नॉलेज है ना, तुम्हारी बुद्धि में भी ये बैठना चाहिए। बाबा जो सारा ज्ञान देते हैं तो बाबा की चीज सारा ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में बैठना चाहिए। ये नॉलेज बुद्धि से धारण करनी है। कहा भी जाता है तुम्हारी बुद्धि ठीक है ना, कई बार कोई बात किसको समझाते ना नहीं बैठते, उसको कहते समझते हो या नहीं समझते हो, फिर क्या कहें तुम्हारी बुद्धि ठीक है या नहीं, तुम्हारी बुद्धि कहाँ घूम रही है, तुमको कितना समझाया क्यों नहीं समझते हो। लेकिन बाबा भी क्यों कह रहे हैं बच्चों को, इतना बाबा समझाते हैं फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता, तो बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि अभी ठीक नहीं हुई है ना, तो इसलिए बाबा को कहना पड़ता है कि कहा भी जाता है तुम्हारी बुद्धि ठीक है ना, बुद्धि आत्मा में रहती है, आत्मा ही बुद्धि से समझ रही है, समझने वाली आत्मा, लेकिन किस ऑर्गन से समझती है, जैसे मुख से खाते हैं और हाथ से कर्म करते हैं तो आत्मा बुद्धि रूपी ऑर्गन से समझती है, आत्मा ही बुद्धि से समझ रही है। तुम्हारी पत्थर बुद्धि किसने बनाया, बाबा बच्चों से पूछते पत्थर बुद्धि क्यों बने, किसने बनाया। अभी तुम समझते हो रावण ने हमारी बुद्धि को क्या बना दिया, क्या से क्या कर दिया, कहां हम इतने ऊंच समझदार थे, उसने क्या कर दिया। कल तुम रावण को नहीं जानते थे, बुद्धि को एकदम गॉडरेज का ताला लगा हुआ था, बाबा ने ज्ञान दिया तब तो समझे ड्रामा को, ज्ञान से पहले तो ड्रामा को समझते नहीं थे, भल दुनिया वाले कहते ड्रामा है खेल, लेकिन इसका वास्तविक रहस्य क्या वो तो नहीं जानते थे ना। तो फिर बाबा कहते हैं कल तुम ड्रामा को नहीं जानते थे, बुद्धि को एकदम एकदम ऐसा स्ट्रॉन्ग इतना पक्का, एक होता है नॉर्मल सा लगा दिया, तो बाबा कहते बुद्धि को एकदम गॉडरेज का ताला लगा हुआ था। गॉड अक्षर तो आता है ना, बाप जो बुद्धि देते हैं वह बदल कर पत्थर बुद्धि हो जाती है। बाबा ने पारस बुद्धि बनाया और रावण ने क्या किया, पत्थर बुद्धि बना दिया। फिर बाप आकर के ताला खोलते हैं और सतयुग में है ही पारस बुद्धि, बाप आकर के सबका कल्याण करते हैं, नंबर वन सबकी बुद्धि खुलती है। बुद्धि का ताला तो खुल गया है लेकिन उसमें भी बुद्धि का ताला बाबा को कहना पड़ता है, नंबर वन खुला तो है लेकिन बीच बीच में कुछ न कुछ अड़चन डाल देते हैं, थोड़ा बंद कर लेते हैं फिर खोलते हैं, तो इसलिए बाबा को क्या कहना पड़ता है, नंबर वन सबकी बुद्धि खुलती है, फिर एक दो के पीछे आते रहते हैं, ऊपर में तो कोई रह न सके, परम धाम में अभी तक भी जो आत्माएं हैं वो लास्ट तक आती रहती हैं, और लास्ट तक जब आ जाएंगी तो फिर वापिस जाना शुरू होगा। पतित वहां रह न सके, बाप पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाते हैं, वहां सब पावन आत्माएं रहती हैं, परम धाम में भी सब पावन रहती हैं और सतयुगी दुनिया पावन दुनिया में भी सब पावन रहते हैं। वह निराकारी सृष्टि, तुम बच्चों को अभी सब मालूम पड़ा है इसलिए अपना घर भी जैसे कि बहुत नजदीक दिखाई पड़ता है। कभी कभी बाबा मुरली में बताते ना कि जैसे कोई ट्रेवलिंग करके आता है घर के पास पहुंचते तो उनको याद आता है ये झाड़ है, ये घर है, ये हमारा स्थान, अभी हम पहुंचे कि पहुंचे। तो बाबा कहते अभी भी क्या करना है, बच्चों की बुद्धि में क्या होना चाहिए कि जैसे कि अपना घर नजदीक दिखाई देता है, तुम्हारा घर से बहुत प्यार है, तुम्हारे जैसा प्यार और कोई का है नहीं। क्यों? क्योंकि हमें घर भी याद आता है, अपने घर भी जाना है, अपने घर जाए बिना तो हम स्वर्ग में आ नहीं सकते, इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा घर से बहुत प्यार है, तुम्हारे जैसा प्यार तो और कोई का है नहीं, फिर भी तुम्हारे में भी नंबर वन है, जिनका बाप के साथ लव है उनका घर के साथ भी लव है। अब बाबा बच्चों की निशानी बता रहे कि बाबा के साथ भी प्यार रहेगा और घर के साथ भी। मुर्बी बच्चे होते हैं ना, तो मुर्बी बच्चों की निशानी बाप के साथ भी प्यार और किसके साथ, घर से भी प्यार, घर से भी लव। मुर्बी बच्चे होते हैं ना, तुम समझते हो यहाँ जो अच्छी रीत पुरुषार्थ कर मुर्बी बच्चे बनेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। छोटे अथवा बड़े शरीर के ऊपर नहीं है, ज्ञान और योग में जो मस्त है वह बड़े हैं। अब दूसरा राज बाबा बता रहे हैं, कई बार कहते ना हम बहुत टाइम से बहुत वर्षों से ज्ञान में हैं, वो तो है लेकिन ज्ञान की धारणा और वो मस्ती कितनी है। और अभी नए नए आते हैं, छोटे बच्चे हैं ज्ञान में, छोटे बच्चे भी ज्ञान में नए नए हैं और बहुत मस्ती हैं, तो बाबा कहते वो बड़े हो कहलाते हैं। और बड़े और छोटे का एज का शरीर का नहीं है, ये है ज्ञान और योग की धारणा के ऊपर निर्भर करता है। ज्ञान और योग में जो मस्त है वह बड़े हैं, समझा। अभी कई छोटे छोटे बच्चे भी ज्ञान योग में तीखे होते हैं तो बड़ों को पढ़ाते हैं, नहीं तो कायदा है कि बड़े छोटों को पढ़ाते हैं। कायदा तो ये होता है ना, छोटा थोड़ी हो लेकिन छोटा इंटेलिजेंट है, सारी ज्ञान है तो बड़ों को बता देता है। शुरू शुरू में क्या होता था, बहनें जाती थी महात्माओं के पास समझाने के लिए, कहती है आज की बच्चियां क्या समझाएंगे, ये छोटी छोटी हमें क्या समझाएंगे, हम इतने बड़े विद्वान हैं। और अभी कितना प्यार से सुनते हैं, वो समझते हैं कि ये ज्ञान जो बाबा ने दिया है कितना अच्छा ज्ञान दिया। तो बाबा कहती ज्ञान से बड़े हैं ना कि शरीर से। तो बाबा कहती हैं ज्ञान और योग में जो मस्त है वह बड़े हैं। कई छोटे छोटे बच्चे भी ज्ञान योग में तीखे जाते हैं तो बड़ों को पढ़ाते हैं, नहीं तो कायदा है बड़े छोटों को पढ़ाते हैं। आजकल तो मिड ग्रेड भी हो जाते, मिड ग्रेड समझते ना, एकदम छोटे छोटे होते हैं, वो एज बड़ी होगी लेकिन कद देखो तो बिल्कुल छोटा है। फिर बाबा ने एक और बात कही कि मिड ग्रेड कौन है, समझते ना। आज बाबा ने क्या बताया सुनना, आजकल तो मिड ग्रेड भी हो जाते हैं, यूं तो सब आत्मा मिड ग्रेड है, क्यों, वो तो इतनी छोटी बिंदी है। अब बिंदी ना बढ़ेगी ना घटेगी ना उसका कुछ भी नहीं हो सकता, तो आत्मा बिंदी है तो उसको क्या कहेंगे, बिंदी को बाबा आज कह रहे मिड ग्रेड है, आत्मा बिंदी है उनका क्या वजन करेंगे। सितारा है, मनुष्य लोग सितारा का नाम सुनकर कहाँ देखेंगे, ऊपर देखेंगे। जब सितारे की बात आती है तो बुद्धि भी ऊपर जाती है, देखते भी ऊपर है। मनुष्य लोग सितारा नाम सुन ऊपर में देखेंगे, और तुम सितारा नाम सुन क्या करेंगे, बताओ भी क्या करेंगे, सब बोलो, अपने को देखेंगे, अपने भाग्य को वर्णन करेंगे और खुशी में आएंगे। तुम सितारा नाम सुन अपने को देखते हो, धरती के सितारे तुम हो। आज का टाइटल धरती के सितारे तुम हो, वह है आसमान के जो जड़ हैं, तुम चैतन्य हो उनमें, तो फेर बदल कुछ होता ही नहीं है। वो जहाँ खड़े हैं बल चक्कर लगाते हैं लेकिन चेंज तो नहीं होता ना, उनमें फेर बदल कुछ होता ही नहीं है। तुम तो 84 जन्म लेते हो, कितना बड़ा पार्ट बजाते हो तुम धरती के सितारे, 84 जन्म लेते हो कितना बड़ा पार्ट बजाते हो, पार्ट बजाते बजाते चमक डल हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती। इन धरती के सितारे क्या करते हैं, पार्ट बजाते बजाते फिर उनकी जो चमक है धीरे धीरे कम होती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। फिर बाप आकर के भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा उझाई हुई है। उझाई हुई का अर्थ है कि वो उसकी ज्योति जो है ना बिल्कुल डल हो चुकी है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा उझाई हुई है, ताकत जो भरी हुई थी वह खलास हो गई है। अब बाप द्वारा ताकत भरते हो, तुम अपनी बैटरी को चार्ज कर रहे हो। इसमें माया भी बहुत विघ्न डालती, जब बैटरी को चार्ज करने लगते ना, माया भी कोई कम नहीं है, बहुत विघ्न डालती है, बैटरी चार्ज करने ही नहीं देती है, इतना विघ्न डालती है कि बैटरी को कनेक्ट ही नहीं होने देती है, बैटरी चार्ज करने ही नहीं देती है। तुम चैतन्य बैटरियां हो। पहले का धरती के सितारे, फिर दूसरा क्या बाबा ने कहा, तुम चैतन्य बैटरियां हो। जानते हो कि बाप के साथ योग लगाने से हम सतो प्रधान बनेंगे, अभी तमो प्रधान बने हैं। उस हद की पढ़ाई और इस बेहद की पढ़ाई में बहुत फर्क है। कैसे नंबर वन सब आत्माएं ऊपर जाती हैं, फिर अपने अपने समय पर पार्ट बजाने आती हैं। सबको अपना अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। तुमने ये 84 का चक्कर कितनी बार बजाया होगा? अब बाबा पूछते हैं, कितनी बार बजाया, गिनती कर सकते हो? अनगिनत बार, कोई गिनती नहीं है। तुमने ये 84 का पार्ट कितनी बार बजाया होगा? तुम्हारी बैटरी कितनी बार चार्ज और डिस्चार्ज हुई है? और जब जानती हो कि हमारी बैटरी डिस्चार्ज है, तो फिर चार्ज करने में देरी क्यों करनी चाहिए? पता है कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, वैसे भी आप देखते हैं मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है, फटाफट उसको चार्ज करने लग जाते हैं। यहाँ आते हैं ना भाई बहने, नीचे से आते हैं, वो आते तो उनका मोबाइल डल होने लगता है ना, बैटरी कम होती है, तो आते पूछते रहते हैं कहाँ कनेक्शन मिलेगा, कहाँ हम चार्ज करें, वो ढूंढते रहते हैं चार्ज करने के लिए, रख देते। फिर बाबा कहते, जब तुम्हें पता है बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, तो उसको चार्ज करने में देरी क्यों करते हो? बाबा कहते हैं, जानती हो हमारी बैटरी डिस्चार्ज है, तो उसको चार्ज करने में देरी क्यों करनी चाहिए? परंतु माया बैटरी चार्ज करने नहीं देती है। माया बैटरी चार्ज करना तुमको भुला देती है। कई बार कहेंगे ना, अरे अरे मेरा मोबाइल डल हो गया, वो काम नहीं कर रहा, मैं चार्ज करना था भूल गया। तो आज बाबा भी क्या बता रहे हैं कि माया तुम्हारी बैटरी को चार्ज करना भी भुला देती है, कि चार्ज करना वो भी भूल जाते हैं। माया तुम्हारी बैटरी को चार्ज करना भी तुमको भुला देती है, घड़ी घड़ी बैटरी डिस्चार्ज करा देती है। कोशिश करते हो बाप को याद करने की, परंतु कर नहीं सकते हो। तुम्हारे में जो बैटरी चार्ज कर सतो प्रधान तक नजदीक आते हैं, उनसे भी अभी बाबा बताते, देखो माया कोई छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़ों को भी पकड़ लेके सतो प्रधान के बन गए, नजदीक हो गए। तो बाबा कहते, तुम्हारे में भी जो बैटरी चार्ज कर सतो प्रधान तक नजदीक आते हैं, उनसे भी कभी कभी माया गफलत कराए बैटरी डिस्चार्ज कर देती है, ये पिछाड़ी तक होता रहेगा। बाबा ने कहा, अच्छा डिस्चार्ज हो गई तो घबराओ नहीं, ये तो अंत तक माया अपना खेल करती रहेगी, वो अपना करेगी, और बच्चों को क्या करना है, अपना करना है, ये पिछाड़ी तक होता ही रहेगा। फिर जब लड़ाई का अंत होता है तो सब खत्म हो जाते हैं, फिर जिसकी जितनी बैटरी चार्ज हुई है उसी अनुसार पद पाएंगे। जब लास्ट टाइम आएगा, अंत का समय होगा, जितनी बैटरी चार्ज हुई होगी उसी अनुसार पद मिलेगा। फिर जब लड़ाई का अंत होता है तो सब खत्म हो जाते हैं, फिर जिसकी जितनी बैटरी चार्ज हुई होगी उस अनुसार पद पाएंगे। सभी आत्माएं बाप के बच्चे हैं, बाप ही आकर के सबकी बैटरी चार्ज कराते हैं। खेल कैसा वंडरफुल बना हुआ है, बाप के साथ योग लगाने से घड़ी घड़ी हट जाते। बाबा के साथ योग लगाते हैं, सुई वहां रखते हैं, फिर ऑटोमेटिकली सुई हट जाती है। तो बाबा कहते, खेल भी कितना वंडरफुल है कि बाप के साथ योग लगाने से घड़ी घड़ी हट जाते हैं, तो कितना नुकसान होता है। बाबा को भूले तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। ना हटे उसके लिए पुरुषार्थ कराया जाता, बाबा की जिनकी बुद्धि की लाइन लगी रहे, हटे नहीं, डिस्कनेक्ट ना हो, उसके लिए बाबा पुरुषार्थ कराते हैं। ना हटे उसके लिए पुरुषार्थ कराया जाता है। पुरुषार्थ करते करते जब समाप्ति होती है तो फिर नंबर वन पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारा पार्ट पूरा होता है। जैसे कलप कलप होता है, आत्माओं की माला बनती रहती है। आत्माओं की माला तो बनी हुई है, बनती रहती है। तुम बच्चे जानते हो रुद्राक्ष की माला है, विष्णु की भी माला है, आत्माओं की माला है ना, उसको कहते रुद्राक्ष की माला है, विष्णु की माला भी है। पहले नंबर तो उनकी माला रखेंगे ना, कौन सी रखेंगे, रुद्राक्ष की। बाप दैवी दुनिया रचते हैं, जैसे रुद्र माला है वैसे रुंड माला। रुद्र माला रुद्राक्ष की है, आत्माओं की है, रुंड माला देवी देवताओं की है। ब्राह्मणों की माला भी बन नहीं सकेगी। बाबा कहते कितना भी ब्राह्मणों की माला बनाओ, आपको पता ना शुरू शुरू में साकार बाबा ने ब्राह्मणों की माला बनाना शुरू किया। और जब माला बनाया जो आज पहले नंबर में है, दूसरे दिन में उसका नंबर पांचवा छठा चला जाएगा। वो कहेगा क्यों, मैं तो पहले नंबर में हूँ, मेरे को पीछे क्यों कर दिया, मेरे को पीछे क्यों कर दिया। फिर जो है कुछ कुछ माला के दाने आज है कल भाग गए। तो बाबा ने फिर माला बनाना बंद ही कर दिया, क्योंकि माला के नाम से वो पुरुषार्थहीन हो जाते, नशा चल जाता था कि मैं पहले नंबर में हूँ, मैं पुरुषार्थ क्यों करूँ। वो नशा उसको वहां से माला से ही दूर कर गया। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकेगी, क्यों, बदली सदली होते रहते, कभी देखो तो इतना ऊंच पुरुषार्थ और कभी देखो एकदम नीच, क्योंकि बदली सदली होती रहती है। फाइनल तब होंगे जब तब रुद्र माला बनेगी। ये ब्राह्मणों की माला है परंतु इस समय बन नहीं सकती, कितना भी करो माला है लेकिन बन नहीं सकती है। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा के सब संतान है, शिव बाबा की संतान की भी माला है, सारी दुनिया की आत्माएं वो शिव बाबा की संतान है, उनकी सारी माला है। और बाबा के प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हम ब्राह्मणों की माला अलग है। उस दिन भी तो बाबा ने बताया ना, आठ की माला है, 108 की है, 16108 की है, फिर सब ब्राह्मणों की माला है। तो बाबा कहते शिव बाबा की संतान की माला है। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा की सब संतान है, शिव बाबा की संतान की भी माला है, विष्णु की भी माला कहेंगे। तुम ब्राह्मण बनते हो ब्रह्मा की, फिर शिव की माला भी चाहिए। ये सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में नंबर वन है। सुनते तो सभी हैं, परंतु कोई का उस समय ही कानों से निकल जाता है। अब बाबा जानते हैं ना कि बच्चों की स्टेज क्या है, सुन रहे हैं, बुद्धि में बैठ भी रहा है और कभी कभी बुद्धि से निकल जाता है, इसलिए बाबा को कहना पड़ता है। सुनते तो सभी हैं, परंतु कोई का उस समय ही कानों से निकल जाता है, सुनते ही नहीं है। यहाँ बैठे रहेंगे, बुद्धि कहाँ से कहाँ चली जाती, कोई न कोई बात याद आ गई तो बाबा की उमरली की पॉइंट मिस हो गई। फिर कहेंगे क्या बोला बाबा ने, क्या सुनाया था, तो बाबा की तो सुनते ही नहीं है। सुनते तो सभी हैं, परंतु कोई का उस समय ही कानों से निकल जाता है। सुनते ही नहीं है, कोई तो पढ़ते ही नहीं है, ना सुनेंगे ना पढ़ेंगे, उनको पता ही नहीं पड़ता है कि भगवान पढ़ाने आए हैं। इतना नशा होना चाहिए, बाबा पढ़ा रहे हैं, बाबा सुना रहे हैं, बाबा की तो उनको ये नशा ही नहीं रहता, पता ही नहीं पड़ता है, उनको पता ही नहीं पड़ता कि भगवान पढ़ाने आए हैं, पढ़ते ही नहीं है। ये पढ़ाई तो कितनी खुशी से पढ़नी चाहिए, नशा चढ़ा रहे, इस पढ़ाई को कितना खुशी से पढ़ना चाहिए, ये पढ़ाई तो कितना खुशी से पढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सा। पहला है, याद की यात्रा से आत्मरूपी बैटरी को चार्ज कर सतो प्रधान तक पहुंचना है। याद की यात्रा से आत्मरूपी बैटरी को चार्ज कर सतो प्रधान तक पहुंचना है। ऐसी कोई भी गफलत नहीं करनी है जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। दूसरा, मुर्गी बच्चा बनने के लिए बाप के साथ साथ घर से भी लव रखना है। घर को तो याद करना ना, मुर्गी बच्चा बनने के लिए बाप के साथ साथ घर से भी लव रखना है। ज्ञान और योग में मस्त बनना है। बाप जो समझाते हैं वह अपने भाइयों को भी समझाना है। आज का वरदान, एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा एक की आकर्षण में रहने वाली कर्म बंधन मुक्त भव। एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा एक की आकर्षण में रहने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। सदा इसी अनुभव में रहो, क्या कि एक बाप दूसरा न कोई। कहते ना, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, गाती रहती है ना माताएं। तो बाबा कहते सदा इसी अनुभव में रहो कि एक बाप दूसरा न कोई, बस एक बाबा ही संसार है और कोई आकर्षण नहीं, कोई कर्म बंधन नहीं। बाबा ही संसार है, सब कुछ उसमें है, बस एक बाबा ही संसार है और कोई आकर्षण नहीं और कोई कर्म बंधन नहीं। अपने किसी कमजोर संस्कार का भी बंधन ना हो। जो किसी पर मेरेपन का अधिकार रखते हो, उन्हें क्रोध या अभिमान आता है, ये भी कर्म बंधन। मेरेपन में आ जाता है ना सूक्ष्म क्रोध या अभिमान आता है, तो बाबा कहते ये भी कर्म बंधन है। अपने किसी कमजोर संस्कार का भी बंधन ना हो। जो किसी पर मेरेपन का अधिकार रखते हो, उन्हें क्रोध विवाह अभिमान आता है, तो ये भी कर्म बंधन है। लेकिन जब बाबा ही मेरा संसार है, ये स्मृति रहती है, तो सब मेरा मेरा एक मेरे बाबा में समा जाता है और कर्म बंधनों से सहज ही मुक्त हो जाते हो। स्लोगन, महान आत्मा वह है जिसकी दृष्टि और वृत्ति बेहद की है। महान आत्मा वह है जिसकी दृष्टि और वृत्ति बेहद की है। आज 6 तारीख है। आज का व्यक्ति इशारा अभी हम सुनेंगे। आज 6 तारीख है। आज का व्यक्ति इशारा, जितना अपने को सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करेंगे उतना संतुष्ट रहेंगे। अगर जरा भी कमी की महसूसता हुई तो जहां कमी है वहां असंतुष्टता है। भल अपना राज्य नहीं है इसलिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, परंतु जहां प्रॉब्लम है तो खेल हो गई। प्रॉब्लम है तो खेल हो जाता है। हिम्मत रखने से समय पर सहयोग मिल जाता है, इसलिए अपनी संतुष्टता के साथ साथ स्वयं की श्रेष्ठ स्थिति से सर्व आत्माओं को संतुष्टता का सहयोग दो। अच्छा, ओम शांति शांति।
पढ़ सकते, चलो।
अच्छा, एक सूचना है मृत्युंजय भाई की तरफ से सभी डिपार्टमेंट के इंचार्ज भाई बहनों के प्रति। वैसे तो बोर्ड पर ये लिख देना चाहिए, यज्ञ की संभाल और जान माल की सुरक्षा के लिए अग्निशमन वाहन फायर ब्रिगेड की टीम 3 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम 9 से 11 दिसंबर तक शांतिवन में शांतिवन के ट्रेनिंग सेंटर हॉल नंबर 1 में आयोजित किया गया। ये 3 दिन की ट्रेनिंग रखी है कि फायर ब्रिगेड की अग्निशमक, ये बोर्ड पे लिख दिया जाएगा, सभी डिपार्टमेंट वाले पढ़ लेंगे, फिर भी अभी सुना रहे हैं, आबू निवासी भी सुन सकते हैं, हॉस्पिटल के भाई बहने जो डिपार्टमेंट वाले वे भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो मैं बता रही हूँ, यज्ञ की संभाल और जान माल की सुरक्षा के लिए अग्निशमन वाहन फायर ब्रिगेड की 3 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम दिनांक 9 से 11 दिसंबर 2024 तक शांतिवन के ट्रेनिंग सेंटर हॉल नंबर 1 में आयोजित किया गया है। इस ट्रेनिंग को कराने के लिए विशेष 2 अग्निशमन विशेषज्ञ शांतिवन में आ रहे हैं, जो आग की दुर्घटना के बचाव के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। ये ट्रेनिंग विशेष श्रमिकों, सिक्योरिटी गार्ड और बिल्डिंग संभालने वाले भाई बहनों के लिए भी रहेगी। नॉर्मली तो भाई होते, कहाँ का बहने भी सिक्योरिटी में होती है। ट्रेनिंग में भेजने के नाम, विभाग और मोबाइल नंबर लिखकर बीके चुनेश भाई, उसका मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है, उनके व्हाट्सएप पर भेजने अथवा कॉल करके बता सकते हैं। ट्रेनिंग का समय रहेगा प्रातः 10 से दोपहर 1 बजे तक और शाम को 4:30 से 6 बजे तक। ये मृत्युंजय भाई ने भेजा है और इसको बोर्ड पर लगा दिया जाएगा ताकि डिपार्टमेंट इंचार्ज भाई बहने इसको अच्छी तरह से पढ़ सकें। अच्छा, अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे।